प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज की हमारी महफिल में जो हमारे मेहमान हैं वो मात्र एक फिल्म संगीतकार ही नहीं बल्कि एक बेहद चर्चित और गुणी संगीतज्ञ भी हैं। अभी हाल ही में भगवान रजनीश यानी ओशो पर बनी एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म रिबेलियस फ्लावर में इन्होंने संगीत दिया है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करें अमानो मनीष जी का। अमानो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो प्लेबैक के मंच पर।
धन्यवाद सजीव जी, मुझे बहुत खुशी आप सबसे यहाँ बात करके।
अमानो, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके उस वाद्य के बारे में जिसमें आप सिद्धहस्त हैं। प्लीज हमें और हमारे श्रोताओं को जरा बताएं कि ये स्लाइड गिटार क्या है और ये सामान्य गिटार से किस तरह अलग है।
जी जरूर, गिटार मुख्यतः दो तरह से बजाया जाता है। एक तो होता है स्पेनिश तरीका, जिसमें गिटार को अपराइट रख के यानी कि खड़ा रख के बजाया जाता है, और दूसरा तरीका है जिसमें उसको लेटा कर गोदी में या लैप में और फिर उसे स्लाइड बार से स्लाइड करके बजाया जाता है, तो इसलिए उसको स्लाइड गिटार कहते हैं। और ये स्लाइड गिटार सबसे पहले निकला है हवाई आइलैंड से, इसलिए इसको हवाइन गिटार भी कहते हैं। तो ये जब ट्रैवल करके हमारी कंट्री में आया, देश में आया, तो कई लोगों ने इसे अपनाया, स्पेशली बंगाल के लोगों ने, और फिर सबसे पहले इस पे क्लासिकल म्यूज़िक पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी ने बजाया, फिर विष्णुमोहन भट्ट जी और देवाशीष भट्टाचार्य जैसे बहुत ही सिद्धहस्त और दिग्गज और पंडित कलाकारों ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया।
जी, तो आपने ये वाद्य कब और कैसे सीखा?
मेरे पिताजी भी इसे बजाते थे, तो बचपन से ही मैं इसे थोड़ा बहुत बजाने लगा था अपने ढंग से, और बाद में मैंने सीरियसली इसे पंडित बसंत काबरा जी से सीखना शुरू किया, फिर थोड़ा ब्रिजभूषण जी से भी, और मैं जो मॉडल बजाता हूँ स्लाइड गिटार का, इसके कई मॉडल्स हैं, जो जैसे विष्णुमोहन जी इसे मोहन वीणा के नाम से बजाते हैं उनका मॉडल जो है, और मैं देवाशीष भट्टाचार्य जी का जो मॉडल है चतुरंगी उसे बजाता हूँ। तो इसमें डिफरेंसेस सिर्फ ट्यूनिंग अरेंजमेंट्स के और टेक्निक्स के हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अपना ट्यूनिंग अरेंजमेंट डाल रखा है और टेक्निक्स भी अपनी इसको मैंने धीरे धीरे डेवलप की है।
जी, अभी आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं कुछ आपके रचनाएं सुन रहा था और सभी में मुझे एक अद्भुत आनंद और अद्भुत प्योरिटी मुझे नज़र आई। ये आपकी बहुत सारी एल्बम्स मैं देख रहा था कि आ चुकी हैं, तो ये व्यावसायिक संगीत सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
इस सफर की शुरुआत तो राजस्थान में जोधपुर शहर जहाँ मैं पला बड़ा वहीं से हो गई थी, पहले से ही बचपन से ही। और फिर 98 में जब मैं पूना आया तो यहाँ भी वो सफ़र जारी रहा। यहाँ मैं 4-5 साल ओशो आश्रम में अंदर रहा, मैंने काम किया और बहुत से देशी विदेशी मित्रों के साथ संगीत हमने यहाँ पे बजाया और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। तो यात्रा तब से शुरू हुई और अब तक जारी है किसी न किसी रूप में।
अमानो भाई, कहते हैं कि हर कलाकार की एक आंतरिक संवेदना होती है जो उसकी कला में भी दिखाई या सुनाई देती है। एक ओजपूर्ण ध्यान और प्रेम की धारा आपकी सभी रचनाओं में हमें नजर आई। जाहिर है इसमें भगवान रजनीश जी के उपदेशों का भी एक बड़ा योगदान रहा होगा। तो कभी आपको मौका लगा कि आप उनको सुन सकें, लाइव सुन सकें या उनके साथ कुछ समय बिता सकें, क्या ऐसा कभी मौका मिला आपको?
अगर आप ओशो की बात कर रहे हैं तो नहीं, मुझे उन्हें लाइव सुनने का तो नहीं मौका मिल पाया, लेकिन आश्रम में जो भी मेरा समय गुजरा था वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए, और वो सौभाग्य ज़रूर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, और फिर वो अपने आप ही शायद मेरे संगीत में भी आ गया, तो ये ज़रूर रहा।
लेकिन मानव भाई, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ओशो आश्रम तक जाने का विचार आपको कैसे बना? मतलब आप शुरू से ही भगवान रजनीश के प्रवचनों से प्रेरित थे या कैसे? या फिर आपके घर वालों को क्या इस बारे में कोई आपत्ति रही आपको? कुछ थोड़ा सा बताइए, वो थोड़ा इतिहास बताइए कि आप राजस्थान से पुणे के ओशो आश्रम तक कैसे पहुँचे?
हाँ सर जी भाई, आप शायद मुझे वाकई बहुत पीछे ले जा रहे हैं। वो दौर था जब वाकई मैं बहुत से प्रश्नों और संदेहों के जाल में घिरा हुआ था, और अपने समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो उन्हीं दिनों फिर ओशो की किताबें आ गई सामने और पढ़ने लगा, और फिर प्रवचन भी सुनने काफ़ी, और उन्हीं की डोर थामते हुए फिर हम पूना भी पहुंच गए। तो हालांकि ये कोई प्लान नहीं था, इसका कोई बाकायदा कोई योजना नहीं बनी, मगर ये ऐसे होता गया और यहाँ पूना पहुंच गया।
अब मानो हम एक सॉन्ग ब्रेक लेंगे जिसके बाद ओशो की जीवनी पर बनी फिल्म रिबेलियस फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सॉन्ग की जगह आपकी कोई संगीत रचना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। दोस्तों हमें यकीन है कि ये ट्रैक आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस ट्रैक के संगीतकार यानी अमानो मनीष आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में, और मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी। तो अमानो अब हमें बताइए इस फिल्म के बारे में, रिवेलियस फ्लावर जिसका नाम है, ये एक डॉक्यू ड्रामा है, और इस फिल्म की योजना कैसे बनी और थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कि इस फिल्म में आपके साथ साथ कौन कौन जुड़े, और ये बताइए कि इसे डॉक्यू ड्रामा ही क्यों बनाया आपने, इसे एक फीचर फिल्म की तरह क्यों नहीं प्लान किया?
सजीव भाई ये फीचर फिल्म ही है, डॉक्यू ड्रामा पता नहीं ये कहलाया जाएगा या नहीं, इसकी स्टोरी लाइन भी इसी तरह से है। तो और इसे लिखा है स्वामी जगदीश भारती जी ने, जिन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी और मूवी के गाने भी लिखे, और वो इस फिल्म के निर्माता भी हैं, और उनसे मेरा परिचय काफ़ी पुराना है आश्रम के समय से। और शुरू में उन्होंने मुझे सिर्फ दो गाने करने का अवसर दिया था, एक है नानी नाम का गाना और एक है उड़ उड़ नाम का। जो फिल्म रिलीज हुई है उस वर्जन में ये दोनों गाने नहीं हैं, लेकिन इसका जब डीवीडी रिलीज होगा तो उसमें ये दो गाने भी रहेंगे। तो शुरू में उन्होंने मुझे दो गाने के लिए आमंत्रित किया था, और फिर वो दो गाने अच्छे लगे उनको, और उन्होंने फिर मुझे बाकी संगीत के लिए भी फिर अवसर दिया। और बाकी गाने जो हैं वो संदीप श्रीवास्तव जो हैं हमारे मित्र जो गोवा में रहते हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया था गाने को, और गाया भी है कई गानों को उन्होंने। तो लेकिन उसका संगीत का पूरा जो संगीत निर्देशन और उसका संगीत बैकग्राउंड सब देना वो मैंने किया था, और मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिर मैंने किया था।
अच्छा अच्छा अमाना भाई, ये जो फिल्म संगीत है इसका स्पेस एकदम अलग रहता है, और चूंकि आप एक टिपिकल जो नॉर्मल संगीतकार होते हैं उस तरह के नहीं है, क्योंकि आपका एक क्लासिकल फील्ड अलग ही है, तो ये एक वाद्य वादक के लिए कितना आसान या मुश्किल होता है कि एक फिल्म संगीतकार का चोला पहनना और इस स्पेस पे अपनी जगह बनाना, क्या ये कुछ अलग रहता है?
ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सजीव भाई। ये जो मूवी का प्रोजेक्ट था ये भी मेरे लिए एक सबसे पहला स्टूडियो जॉब ही था। इससे पहले मैंने बहुत स्वतंत्र रूप से स्टूडियो में काम नहीं किया था, रिकॉर्डिंग तो बहुत की थी लेकिन अपने ही निर्देशन में अपनी ही बनाई हुई किसी चीज़ को एकदम क्रिएट करना वो मैंने इससे पहले इतना नहीं किया था। तो मेरे लिए भी ये पहला ही जॉब था, पहला ही काम था इस तरह का। और यहाँ पे शायद मेरे आश्रम के दिनों का जो अनुभव था वो बहुत काम आया, क्योंकि वहाँ मैंने उस वक्त आश्रम में पूना उषा आश्रम में बहुत अच्छे संगीतकारों के साथ देश विदेश के बहुत से वहाँ पे जो भी संगीत की इवेंट्स होती थी उसमें सबके साथ मैंने ऑर्गेनाइज की थी खुद से बहुत सी चीज़ें, मेरी खुद की कॉन्सर्ट्स, खुद के कंपोजिशंस को सबके साथ मिलके क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना, ये सारा अनुभव वहाँ का जहन में जो था वो इस जॉब में अपने आप ही काम आया। यानी कि ओशो के घर में जो हमने सीखा वही उन्हीं की फिल्म में फिर से काम आ गया। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक वादक है वो एक स्पेशली क्लासिकल बैकग्राउंड से आया हुआ, तो उसका जो देखने का तरीका है म्यूजिक को वो थोड़ा अलग होता है, और जो नॉर्मली जो म्यूजिक डायरेक्शन में लोग आते हैं वो अपने ढंग से आते हैं अलग ट्रैक से। तो मेरे लिए ये शायद ये आश्रम का एक्सपीरियंस यहाँ काम आया, और अपने आप फिर होता गया जैसे जैसे सॉन्ग को जो जो चीज़ें चाहिए होती गई वो क्रिएट भी होती गई, और स्वामी जगदीश भारती जी ने भी बहुत सहयोग और प्रोत्साहन दिया मुझे, और इस तरह से एक बस अच्छा एक प्रयत्न था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और अच्छे से हो गया। बस इसमें भी ओशो का ही आशीर्वाद और उनकी एक इनर गाइडेंस शायद काम करती रही।
जी सही कहा आपने कि जो फिल्म का जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है, और उसमें एक अलग ही कमर्शियल एंगल देखा जाता है कि कुछ आइटम्स नंबर हैं, कुछ रोमांटिक नंबर हैं, इस तरह से। तो ये बताइए कि आगे भी अगर आपको कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसे करना चाहेंगे, और किन शर्तों पर करना चाहेंगे?
हाँ क्यों नहीं, जो भी प्रोजेक्ट आएगा मेरे लिए उसकी वैल्यूएशन ऐसे नहीं है कि वो कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल, बट एक अच्छे इंसान की तरफ से एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है तो मैं, और मुझे भी ठीक लग रहा है, मैं डेफिनेटली करूँगा, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी संदर्भ में रिबेलियस फ्लावर का एक दूसरा सीक्वल भी आ रहा है, रिबेलियस फ्लावर 2, जिस पे भी अभी कुछ समय में हम काम शुरू करेंगे, तो उसका कैनवास थोड़ा और बड़ा है और उसमें और अच्छा स्कोप है काम करने का, तो एक आध साल बाद वो भी शायद सामने आएगा सबके। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में, बेसिकली म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए और जो उस म्यूज़िक का पर्पज़ है वो पूरा होना चाहिए।
जी ये बहुत ही खुशी की बात है हम श्रोताओं के लिए। अच्छा ये बताइए कि इस फिल्म में इतने गीत हैं तो सबसे मुश्किल गीत कौन सा रहा आपके लिए कंपोजिंग के लिहाज से?
सचिव भाई गीतों में तो कोई ऐसी दिक्कत कहीं भी नहीं आई, आराम से सब होते चले गए अपने समय से और अपनी दिशा से, लेकिन मेन चैलेंजिंग मुझे अपनी तरफ से उसका जब बैकग्राउंड स्कोर जब करने की का टाइम था तब था, क्योंकि वो बिल्कुल ही नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि रशेस के सामने रशेस को देखते हुए कई चीज़ें प्लान करना, फिर निर्देशक और निर्माता और सब लोगों के साथ कई मीटिंग्स होना, और फिर फाइनली डॉल्बी साउंड्स भी हमने मे भी उसको किया था, तो उस हिसाब से उसको सब टेक्निकली करना वो ज़्यादा थोड़ा चैलेंजिंग था और उसमें भी मज़ा आया। तो ये था इसके मूवी के बारे में थोड़ा अनुभव।
जी अमन भाई एक सवाल जो व्यक्तिगत तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ये है कि आपने बताया कि जैसे आप बहुत सारे सवालों से उलझ रहे थे, जूझ रहे थे जब आप ओशो आश्रम में आए, तो संगीत और अध्यात्म इसको लेकर आप आज किस पोजीशन में हैं? मतलब आज आपके थॉट्स एकदम क्लियर हैं क्या? क्या आप संगीत में अपने ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं? प्लीज इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक आदमी हैं, तो संगीत और अध्यात्म का जो मेल है उसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा।
काफी गहरा और अच्छा प्रश्न पूछा आपने सजीव भाई। संक्षेप में मैं कहूंगा कि कोई भी कला हो, कोई भी विधा हो, वो ऐसे ही है जैसे संसार और परमात्मा के बीच की अगर कोई हॉरिजॉन्टल कोई एक क्षितिज रेखा है तो वो कला का क्षेत्र वहां होता है, जिसमें कुछ अंश संसार का आता है, कुछ अंश परमात्मा का आता है। तो ये कलाकार के ऊपर निर्भर है कि उसकी कला में किसका कितना प्रतिशत है, ये खुद उसकी हर एक की यात्रा के ऊपर निर्भर है, और इसमें कोई खास बेईमानी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आप हैं वैसे ही आप प्रतिबिंबित हो जाएंगे अपनी कला के साथ। तो कलाकार तो बिल्कुल एक कुछ भी छुपा नहीं सकता, जो उसके अंदर है वो सीधा प्रतिबिंबित हो जाएगा उसकी कला के द्वारा। तो मेरी जहाँ तक बात है तो निश्चय ही आज मैं बहुत ही एक क्लैरिटी के साथ संगीत भी करता हूँ और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी करता हूँ। वो जो तुलना है उस वक्त की और आज की, तो डेफिनेटली निश्चय ही आज मैं बहुत एक अच्छी क्लैरिटी में हूँ, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी और एक तरह से अनंत समय की है, तो इसलिए ये भी जो है जो आज मुझे क्लैरिटी लग रही है, हो सकता है ये भी सिर्फ फेजल हो, आगे जाके फिर एक कंफ्यूजन का दौर आएगा और फिर उसको उसमें से निकल के फिर हम एक क्लैरिटी में आएंगे, और ऐसा ये प्रोसेस भी चलता रहता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा व्यक्ति की स्पाइरल होती है, स्पाइरल ही जैसे मूव करते हैं हम लोग, तो इसलिए हम बार बार उसी ऑल्टीट्यूड पे, उसी पोजीशन पे, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे आते जाते हैं। तो ऐसा ये मेरा मानना है, बट अंदर से मैं काफ़ी अच्छी स्पेस में हूँ, और मुझे अपने म्यूजिक से भी बहुत अच्छा लगता है जो भी मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और क्योंकि इसमें कोई मेरी दौड़ नहीं है, नथिंग टू प्रूव टू एनीबडी, ना क्लासिकल म्यूजिक में ना किसी में, जो मुझसे हो सकता है होता है, नहीं हो सकता नहीं होता है, और जितनी मेरी पात्रता है और जितना मैं माध्यम बन सकता हूँ इन बातों के लिए उतना मैं बनता हूँ, बाकी नहीं बन पाता। क्योंकि जितना नहीं बन पाता इसका मतलब उतनी अनकॉन्शियसनेस मेरे अंदर है बाकी। तो इसलिए मैंने कहा यात्रा बहुत लंबी है, और बीच बीच में जो क्लियर फेजेस आते हैं उन क्लियर फेजेस में अभी मैं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब मास्टर्स का, न सिर्फ ओशो बल्कि जो भी मेरे सामने साथ थे, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ, उन सब गुरुजनों का और सद्गुरुओं का। तो उसके कारण ये स्थिति में आज मैं अपने आप को पाता हूँ।
जी अमानो भाई, एक सवाल जो मेरे जहन में काफ़ी सालों से घूमता रहा है और ये मैं पूछना चाहता था, लेकिन आज तक मेरे शो में कभी कोई क्लासिकल म्यूजिशियन आया ही नहीं, तो आप पहले हैं, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर मैं जो भी इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स होते हैं उनके नाम देखता हूँ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मिस्टिक कॉल्स नाम की आपकी जो धुन थी वो सुनी, ऐसी बहुत सारे, सबके नाम बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे से नाम होते हैं। अब जैसे जो नॉर्मल गाने होते हैं उनमें तो जो लिरिक्स होता है उसका कोई पंच लाइन या कोई शुरू के अक्षर लेकर हम लोग नाम रख लेते हैं गीत के, तो आप जो है ये जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल्स जो ट्यून्स होती हैं इनके नाम किस तरह रखते हो, मतलब क्या इंस्पिरेशन होती है इसके पीछे?
इसमें सजीव भाई ऐसा है कि कभी कभी तो जिन रागों पर वो पीस आधारित होते हैं उन्हीं रागों को हम अस्थायी रूप से उनका नाम दे देते हैं, और बाद में सबको इतना वो भा जाता है कि वो उस पीस का नाम फिर वो राग ही हो जाता है। कभी कभी जब पीस कंपोज होके अरेंज हो रहे होते हैं तो उस वक्त कोई बैंड मेंबर, कोई फ्रेंड वो भी सजेस्ट कर देते हैं, तो उनको भी थोड़ा एडिट करके उन नामों को, या वैसे के वैसे भी उन नामों को रख लिया जाता है। और कभी कभी कोई स्पेशल फीलिंग्स इवोक्ड हैं उस पीस को लेकर, और वो ज़्यादातर सामने आ रही हैं, कोई डिवोशनल टाइप का पीस है या कोई रोमांटिक पीस है या कोई डांसिंग ज़्यादा जिसमें मैं है वैसा पीस है, तो उसके नाम फिर उस वक्त भी उसी वक्त इंट्यूटिवली अपने आप मुझे तो सूझ जाते हैं, और वो सबको अच्छे भी लगते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आप कोई स्पेशली कुछ चीज़ कंपोज करते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है वो किसी को डेडिकेट करते हैं तो उस पे भी नाम हम रख लेते हैं। जैसे मेरी जो सीडी है फेस ऑफ अ फ्लावर, ये एक पूना में मिस्टिक थी बाबा जान, उनका वो बाबा जान जो है वो मेहर बाबा की भी मास्टर थी, और बाबा जान, साईं बाबा और ये लोग सब पांच परफेक्ट मास्टर्स में कहे जाते हैं। तो बाबा जान का जो बचपन का नाम था वो था गुलरुख, तो उसका एक पोएटिक ट्रांसलेशन मैंने किया था फेस ऑफ अ फ्लावर, यानी कि फूलों जैसे मुख वाला या वाली, तो बट ये एक पोएटिक ट्रांसलेशन है। तो ऐसे भी नाम कभी कभी हम रख लेते हैं प्रोजेक्ट्स के, सीडीज के या फिर ट्रैक्स के।
अमानो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय हमें दिया, और आपसे बात करके हमें बहुत बहुत मज़ा आया। हम इस कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे आपके ही इसी फिल्म रिबेलियस फ्लावर के किसी गीत के साथ, लेकिन वो गीत कौन सा होगा ये आप ही डिसाइड कीजिए, और हमें बताइए कि आपने यही गीत क्यों चुना। और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप हमारी महफिल में आगे भी आते रहिएगा, हम इसी तरह से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।
धन्यवाद सजीव भाई, आपने मुझे यहाँ मौका दिया बातचीत का आपसे और आपके सब श्रोताओं से। तो आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार। और जो गाने की जो आपने बात की रिबेलियस फ्लावर की, तो नानी वाला जो सॉन्ग है, नानी कहे मैं प्यारा हूँ, ये आप बजाएंगे तो सबको शायद बहुत अच्छा लगेगा। ये तीन लड़कियां जो थी, अनुराधा, ज्योत्सना और तनु, इन तीनों लड़कियों ने बहुत ही अच्छे से एक साथ मिलकर ये सॉन्ग गाया था। तो ये अगर आप लास्ट में एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में बजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको शायद। तो फिर से सबका बहुत आभार और प्रेम।
कहे